તારીખ 2/9/1998 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 194 પર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 700
શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત પત્રાંક 194 જીવ કો અનંત કાલ મે મોક્ષ કા માર્ગ નહીં મિલા ઇસકા ક્યા કારણ હો એસે પ્રશ્ન કે ઉત્તર રૂપ મે યહ પત્ર કા વિષય ચલતા હૈ કે જિસકો જ્ઞાની પુરુષ કી પહેચાન હોતી હૈ और इसके बाद वो इसके वचन की प्रतीति आती है। इसका मतलब कि इसके पर उनको अचलित श्रद्धा हुई और आज्ञाकारिता में आता है और स्वसंद निरोध भक्ति होती है, तभी उनको सत्स्वरूप की प्राप्ति होने का अवकाश प्राप्त होता है और क्रमशः आगे जाके वो सत्स्वरूप को प्राप्त करेगा। सर्वज्ञानियों ने इस मार्ग का सेवन किया है भूतकाल में, वर्तमान में सेवन करते हैं और भविष्य में सेवन करेंगे। मैंने तीनों काल के ज्ञानियों ने यही रास्ते से अपना काम किया है। हमको भी ज्ञान प्राप्ति इससे हमें हुई थी, हमको भी ज्ञान प्राप्ति भूतकाल में वैसे ही हुई थी। इसके पहले अपने मति कल्पना से बहुत परिश्रम किया था और बहुत बहुत परिश्रम करने पर भी आत्मकल्याण का मार्ग नहीं मिला था। धर्म साधन तो बहुत किए थे, मार्ग नहीं मिला था। पूर्व भव में तो ज्ञानी पुरुष मिल गए, उनके पर उनकी पहचान हुई, उनके पर विश्वास आया और उनकी आज्ञाकारिता में चले, उनके चरण शरण में रहे तो ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ज्ञान प्राप्ति हुई थी मतलब भूतकाल में वो ज्ञानी थे, पर क्यों थे, कैसे थे, वो भी जाति स्मरण ज्ञान पूर्व भव का ज्ञान होने से वो बता दिया कि हमको ऐसे हुआ था। वर्तमान में इसी मार्ग से होती है और अनागत काल में भी ज्ञान प्राप्ति का यही मार्ग है। यही मार्ग है माने दूसरा मार्ग नहीं है। सर्व शास्त्रों का बोध लक्ष्य देखा जाए तो यही है। बोध लक्ष्य मैंने क्या, उपदेश का लक्ष्य स्थान उपदेश का केंद्र स्थान, सभी शास्त्रों का उपदेश देने का केंद्र स्थान भी यही है, ऐसा कहते हैं। और जो कोई भी प्राणी छूटना चाहता है परिभ्रमण से, जिसको छूटना है उसे अखंड वृत्ति से इसी मार्ग का आराधन करना चाहिए। अखंड वृत्ति से मैंने कैसे कि बीच में गड़बड़ हो जाए ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। तो खंड पड़ गया इसमें कहीं गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अखंड वृत्ति से यही मार्ग का आराधन करना चाहिए। पीछे लाग सब सुर सत पुरुष के तो सब बंधन तोड़। वो अखंड वृत्ति से पीछे लगना चाहिए। इस मार्ग का आराधन किए बिना जीव ने अनादि काल से भ्रमण किया है। भ्रमण किया है तो इस मार्ग का आराधन नहीं किया, इसलिए किया है। अगर इस प्रकार आराधन किया होता तो परिभ्रमण नहीं रहता। क्यों? कि ज्ञानी पुरुष की आज्ञा भव में जाने के लिए आड़ा प्रतिबंध समान है, आड़े आती है, जाने नहीं देती, रुक जाओ उधर नहीं जाने का समय। जब तक जीव को स्वच्छंद रूपी अंधत्व है तब तक इस मार्ग का दर्शन नहीं होता। ऐसी सीधी सादी बात होने पर भी क्यों सूझती नहीं? ये स्वच्छंद रूपी अंधत्व है, अपनी मनमानी करनी है। एक भैंसा को चराने वाला, गाय को चराने वाला, बकरे को चराने वाला, उनको भी सामान्य बुद्धि है कि दर्द होता है तो डॉक्टर के पास जाना है। वो दर्द मिटाने के लिए मेडिकल बुक्स पढ़ने को नहीं बैठता। हम लोग जो किताब खोल करके बैठ जाते हैं तो उतनी बुद्धि हमारी नहीं है जितनी बुद्धि एक रबारी को होती है, भरवाड़ को होती है, उतनी नहीं है। फिर भी इतनी सामान्य बुद्धि हम बुद्धिमान होते हुए भी कहीं क्यों नहीं कि स्वच्छंद रूपी अंधत्व काम करता है, हम कर लेंगे, हम हमारे ऐसे हमारी बात हम हमारा काम कर लेंगे। जब तक जीव को स्वच्छंद रूपी अंधत्व है तब तक इस मार्ग का दर्शन नहीं होता, इस प्रकार की सूझ नहीं आती, इसका यही कारण है। अंधत्व दूर होने के लिए यानी स्वच्छंद तोड़ने के लिए जीव को इस मार्ग का विचार करना चाहिए। इस मार्ग का मैंने कि जीव को मार्ग क्यों नहीं मिला, क्या कारण से नहीं मिला, इसका विचार करना चाहिए और दृढ़ मोक्षेच्छा करना चाहिए। छूटने की दृढ़ इच्छा, क्या छूटने की दृढ़ इच्छा। कोई कहते हैं कि हमको ये बात की असर नहीं पहुंचती, ऐसा होता है ना, सुनते हैं समझते हैं असर नहीं पहुंचती। हम पूछते हैं कि आपको मरने का भय है तो हाँ करेगा, बचना है मरने से तो कि हाँ करेगा, कौन मरना चाहेगा। हुँ? तब जब मरने की इच्छा नहीं है तो इस इच्छा को दृढ़ क्यों नहीं करते। ज्ञानी कहते हैं कि एक मरण से नहीं, आने वाले आइंदा आने वाले सभी मरण से तुमको बचा लेते हैं। चलो एक मरण से, तुम तो एक मरण से बचना चाहते हो ना, हम तुमको सभी मरण से बचाते हैं। कितना उत्साह आना चाहिए। और इसके लिए दृढ़ इच्छा तुम्हारी चाहिए क्या? इसके लिए तुम्हारी दृढ़ इच्छा चाहिए। इच्छा तो है, इच्छा नहीं है सो बात नहीं है, लेकिन दृढ़ता नहीं है। दृढ़ मोक्ष इच्छा होवे और सत्पुरुष को नहीं खोजे और उनके स्वच्छंद छोड़ करके उनकी आज्ञा में नहीं आए, ऐसा बने ही नहीं। लेकिन दृढ़ता नहीं है, इच्छा की दृढ़ता नहीं है। अभी ये प्रश्न करोगे कि हमको दृढ़ इच्छा दृढ़ क्यों नहीं होती? इच्छा तो है लेकिन दृढ़ इच्छा क्यों नहीं होती? असत्संग और असत प्रसंग ज्यादा है। क्या है? असत्संग और असत प्रसंग ज्यादा है। वो बात 569 पत्र में की है। मेल तो करना पड़ेगा ना, कोऑर्डिनेशन तो करना पड़ेगा। कोई बात कहीं लिखी है, कोई बात कहीं लिखी है, हमारे आवश्यकता के अनुसार हमको मेल करना चाहिए। क्या ऐसा हमारी इच्छा में दृढ़ता क्यों नहीं है? ये बहुभाग मुमुक्षों की समस्या है, प्रॉब्लम है, एक दो का नहीं है। बहुभाग मुमुक्षों का यही प्रॉब्लम है कि हमको करना है, करना जरूर है, करना है इसलिए तो आते हैं, वरना तो बहुत काम होते हैं, बहुत समस्याएं भी बहुत है, सबको गौण करके इधर आते हैं। तो इच्छा नहीं है वो बात नहीं है, लेकिन दृढ़ता नहीं है तो काम नहीं होता है। दृढ़ मुमुक्षुता चाहिए। दृढ़ मुमुक्षुता कहो, पूर्णता का लक्ष्य कहो, छूटने की तीव्र इच्छा कहो, ऐसा होने से जीव वेदना में आए बिना रहता नहीं। दृढ़ मोक्ष इच्छा और परिभ्रमण की वेदना एक सिक्के के दो पहलू समान है। और जिसको दृढ़ मोक्ष इच्छा होगी उनको यही मार्ग सूझेगा कि मुझे कोई सत्पुरुष के संग में रहना है और उनके आज्ञा में रह करके मेरा आत्मकल्याण मुझे कर लेना है। आज्ञा में रहने का मतलब वो है कि वो जैसा कहे वैसा मुझे करना है, मुझे अपनी मनमानी अपना स्वच्छंद से कोई साधन नहीं करना है। दृढ़ मोक्ष इच्छा करनी चाहिए, होनी चाहिए, करनी चाहिए माने होनी चाहिए। अगर दृढ़ मोक्ष इच्छा नहीं है तो फिर ऊपर ऊपर की इच्छा तो काम में आने वाली नहीं, वो तो अनंत काल में अनंत बेर हो चुकी है, वो काम में नहीं आएगी। और इस विचार में अप्रमत्त रहना चाहिए। इस विचार में मैंने छुपने के विचार में, आत्मकल्याण के प्रयास में शिथिल नहीं रहना चाहिए। अप्रमत्त माने क्या? शिथिल नहीं रहना चाहिए। अप्रमत रहना चाहिए। मैंने प्रमाद प्रमाद मैंने शिथिलता, प्रमाद का मतलब वो नहीं कि हमको नींद आ जाती है, उसको यहाँ प्रमाद नहीं बोला, वो तो है ही, वो तो दुनिया सारी उसको प्रमाद कहती है, इससे आगे की बात है कि हमारी शिथिलता ही प्रमाद है, हमारी शिथिलता ही प्रमाद है। और शिथिलता से दूसरा दुर्गुण वो आता है कि मलिनता को प्राप्त होते हैं परिणाम। जैसे उत्साह नहीं होना, उमंग नहीं होना, बहुत शीघ्रता से त्वरा से हमको काम कर लेना है, ऐसे परिणाम नहीं होना, वो सब शिथिलता में जाता है। और भीतर में थोड़ा बहुत संतोष हो जाता है कि कुछ न कुछ तो करते ही हैं, बिल्कुल कुछ नहीं करते ऐसे तो नहीं है, कुछ तो करते हैं, थोड़ा पढ़ते भी है, थोड़ा वो भी करते हैं, थोड़ा वो भी करते हैं, ऐसा भी करते हैं वैसा भी करते हैं, ये संतोष है वो भी शिथिलता लाती है। और जिसको शिथिलता नहीं, वो त्वरा से काम कर लेना चाहता है, उनको कहते हैं संवेग। जिसको दृढ़ मुमुक्षुता होती है उनको त्वरा से काम करने की वृत्ति होती है, उसको प्रमाद नहीं होता। जिसको दृढ़ मोक्षेच्छा नहीं है उनको शिथिलता रहती है, ये इसके साथ जुड़ी हुई बात है, आनुषंगिक परिणाम है। दृढ़ मोक्षेच्छा के साथ ये परिणाम का संबंध है, उनको जल्दी जल्दी काम करने की वृत्ति रहती है, एकदम जल्दी काम करने की वृत्ति आती है, उस अभिप्राय में वो खड़ा रहता है और उसी अभिप्राय से उसका काम होता, प्रयास चलता है। वो नेचुरल है। क्यों? कि अगर हमको कोई महत्व के कार्य से प्लेन से बाहर जाना है, कहीं भी पहुंचना है, इतना जल्दी पहुंचना है कि हम ट्रेन पसंद नहीं करेंगे, कार पसंद नहीं करेंगे, हमको हवाई जहाज से जाना है। हाँ, अब हवाई जहाज जाने के लिए हमारे पास एयरपोर्ट पहुंचने का टाइम भी कम है, तो हमको सामान वगैरह की तैयारी भी करनी है। अगर हम चूक जाएंगे तो आगे का सब काम चौपट हो जाएगा, सिर्फ हमारी सफर कैंसिल होगी उतना ही बात नहीं है, आगे का जितना महत्वपूर्ण कार्य है वो सब चौपट हो जाएगा। ये सब विचार करना नहीं पड़ता, इसका अभेद ज्ञान, इन सब बातों का अभेद ज्ञान जल्दी जल्दी तैयारी कराता है। जो भी हमको तैयारी करनी है बहुत तेजी से हम तैयारी करने लगते हैं, हाथ पांव को ऑर्डर नहीं करना पड़ता कि तुम जल्दी सामान बांधो, तुम जल्दी चलने लगो, पैर को ये नहीं कहना पड़ता तुम जल्दी से चलो, जल्दबाजी हो ही जाती है, नेचुरल है। वैसे हमारा काम बहुत बाकी है। कितना बाकी है? दृढ़ मोक्षेच्छा का मतलब क्या है कि मोक्ष तो है 14 गुण स्थान के बाद ऊपर का 15वां स्थान है, उसको गुणस्थान नहीं बोलते क्योंकि विभाव वहाँ खत्म हो जाते हैं, विभाव होते हैं वहाँ तो गुणस्थान बोलते हैं, बाकी है 15वां स्थान, वो 14 गुणस्थान के ऊपर वाला, और हम हमारा पहला गुणस्थान में हम खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं? सभी संसारी जीव पहले गुणस्थान में खड़े हैं, पूरा पूरा काम बाकी है और हमारा आयु का कोई भरोसा नहीं है। ऐसे ऐसे प्रसंग बनते भी सुबह तो देखे थे, कहाँ देखे होंगे, लेकिन सुबह ही खत्म हो गया है। क्या बोलेंगे कि सुबह आपने देखे होंगे लेकिन वो खत्म भी सुबह ही हुए हैं। अभी तो शमशान यात्रा की तैयारी चलती है, ये बात होने वाली है, कोई भरोसा नहीं और काम बहुत बाकी है। प्रैक्टिकली इस बात का समझ आती है उसको संवेग शीघ्रता त्वरा उसकी तैयारी हुए बिना रहती नहीं। जिसको संवेग नहीं आता, त्वरा नहीं होती, जल्दी से काम करने की वृत्ति नहीं आती, समझ लेना चाहिए कि उनको दृढ़ मोक्षेच्छा नहीं है और मोक्ष कितना दूर है वो बात उनको यथार्थ रूप से समझ में नहीं आई। समझ में आई होगी लेकिन यथार्थ रूप से समझ में नहीं आई। यथार्थ रूप से आते तो जल्दबाजी हुए बिना रहे नहीं। वहां प्लेन छूटता है तो बोलेंगे घड़ी को देखते हो कि नहीं देखते हो, हाँ देखो कितना टाइम हो गया। और वहां तो बहुत प्रकार की बातें बोलने की होती है, जैसे कोई 5 मिनट देर करता है ना फालतू की तो क्या बोलेगा कि अरे भाई शाम हो गई ऐसे करते करते तुमको, क्या हांज पड़ी हम नमते हैं हम के अजी सवार ने 8 ने 8 ने 5 थी हुई खाली एने समझावा माटे शू कहू पड़े। हांज पड़ी हम नमते में શું વગદા કરતા કરતા, હું વગદા એટલે ખોટો ટાઈમ બગાડતા બગાડતા હાંજ પાડી આમ નામ તમે, હું કહેશે કે એસે શિથિલતા સે તો ભાવ નિકલ જાયગા। શિથિલતા ભી હૈ ઓર અભિપ્રાય કા દોષ હૈ તો વિપરીતતા હૈ, क्योंकि अभिप्राय बदलने के बाद भी देर सवेर हो सकती है थोड़ी बहुत, सबों को एक सा टाइम नहीं लगता, देर सवेर हो सकती है लेकिन अभिप्राय में तो बिल्कुल नहीं चले। अभिप्राय तो बदल जाना चाहिए ही चाहिए और तब संवेग की डिग्री वो कम ज़्यादा होगी, लेकिन संवेग ही नहीं होगा वो बात नहीं बनेगी। ऐसी बात है, तो अभिप्राय में ये बात है कि देर तो लगे ही लगे, ऐसा क्या करे, देर भी लग सकती है, वो अभिप्राय में अगर वो बात है तो वो विपरीतता है और विपरीतता कभी अधूरी नहीं होती। विपरीतता कभी अधूरी नहीं होती, विपरीतता तो पूरी पूरी ही होती है। इसलिए कहते हैं कि अप्रमत्त रहना चाहिए, मैंने शिथिल नहीं रहना चाहिए तो मार्ग की प्राप्ति होकर अंधत्व दूर होता है, यह निशंक माने। अनादिकाल से जीव उल्टे मार्ग पर चला है, क्या करके, यम नियम संयम आप किए, पुण्य त्याग विराग अथाग लिए, मन मौन रहे सब शास्त्रन के नए धारी, ये सब उल्टे मार्ग पर चला है, ये विपरीतता है। अभिप्राय की विपरीतता रही तो ये सब साधन विपरीत अभिप्राय को रख करके किया, यानी जो जीव परिभ्रमण की वेदना में नहीं आया इसका दूसरा मतलब वो होता है कि कि उसको संसार और परिभ्रमण प्रिय है और वो जो कुछ साधन करता है वो अपने संसार के लिए करता है, मोक्ष के लिए नहीं करता है। जाने अनजाने में भी वो संसार के लिए धर्म साधन करता है। हमारे जिनेन्द्र वितराग परमात्मा मोक्ष प्राप्त आत्मा है। कैसे हैं? वो तो मोक्ष प्राप्त आत्मा है, वो मुक्त हो गए हैं। इनके पास खुद का संसार नहीं तो दूसरे का संसार तो होगा ही कहां से। फिर भी हम अगर परिभ्रमण की वेदना में नहीं आए और जिन मंदिर में जाके पूजा भक्ति करेंगे तो हमारी संसार भावना के लिए करेंगे। कैसे करेंगे? संसार भावना को लेकर के करेंगे। सामने मुक्त आत्मा है और हम हमारा संसार बढ़ाने की बात वहां जाके करते हैं, कहीं ये विपरीतता है कि नहीं है? ये सब विपरीतता है। इसलिए कम से कम परिभ्रमण की तो वेदना में आना ही चाहिए, कम से कम। पौराणिक शास्त्र जो है, मैंने 1000-2000 साल पहले लिखे हुए जो शास्त्र हैं, उन शास्त्र में तो ऐसी चर्चा ही नहीं थी। ये तो हमारी करुणाजनक दशा है इसलिए ये सब बातें चल रही है। वहां तो ऐसे ही उपदेश चला है कि तुम मुनि दशा में नहीं आ सको तो कम से कम सम्यक दर्शन को तो पाओ, प्राप्त करो, माने श्रद्धा तो करो इस मार्ग की। तुम इस मार्ग के प्रमुख राजमार्ग में मुनि नहीं बन सको तो कोई बात नहीं, ठीक है, चलो हम उतना आग्रह नहीं रखते हैं आपके लिए, लेकिन सम्यक दर्शन तो तुमको होना ही चाहिए। अब तो कहते हैं कि सम्यक दर्शन तो दिल्ली दूर हो गया, वो दिल्ली तो बुद्ध दूर हो गया, लेकिन परिभ्रमण की चिंतना जो है उसमें आना कठिन हो गया है, ये बात हो गई है। कहाँ खड़े हैं हम, कितने नीचे खड़े हैं, वो एक विचारणीय प्रश्न है, विचार करने, गंभीरता से विचार करने योग्य प्रश्न है ये। क्या कहते हैं कि अनादि काल से जीव उल्टे मार्ग पर चला है, यद्यपि जीव ने जप तप शास्त्र अध्ययन इत्यादि अनंत बार किया है, एक दो बार नहीं किया, अनंत बार करने पर भी 1% काम नहीं हुआ, वो सब उल्टा ही किया है, उल्टा 1% भी नहीं किया। सारी जिंदगी शास्त्र अध्ययन किया, जैन सिद्धांत को पढ़ा, क्या पढ़ा? तो राजमल जी कहेंगे कि कोई जानेगा कि जैन सिद्धांत पढ़ने से या पंच परमेष्टि की भक्ति करने से आत्मकल्याण होता है, तो ऐसी बात तो नहीं है, ऐसा करके लिखा है। दूसरी बात तो रहने दो, यही बात करते हैं। उत्तरता काल 1000 साल में कम योग्यता वाले जीव यहाँ आ रहे हैं, अच्छी अच्छी योग्यता वाले इधर आते नहीं। उत्तरता काल है ना, अवसर्पिणी काल है, हुंडा अवसर्पिणी काल है, तो दिन प्रतिदिन यहाँ जो मनुष्य जन्म लेते हैं उनकी योग्यता अधिक नीचे के स्तर वाली होती है। उस जमाने में उतने नीचे स्तर वाले नहीं थे। हमारे मुनिराज सूत्र ही लिखते थे क्या, दो शब्द में पांच शब्द में ही बात करे, ज्यादा बात ही नहीं करे, ज्यादा लेक्चरबाजी नहीं करे। अभी सुबह शाम दो दो घंटा सुनना पड़े वो बात नहीं थी वहां। निसर्गात अधिगमात वा, चलो हो गया, चार शब्द हो गया, वो बोल दिया, जो बोलने ताकत हो बोल दिया। ऐसी बात थी। फिर कम योग्यता वाला है, आचार्यों ने उस पर टीका की। उस सूत्र को समझाने के लिए टीका के, फिर अयोग्यता वाले जीव आए तो ज्ञानियों ने इस टीका पर प्रवचन दिए। फिर इसके नीचे वाली योग्यता पर आए तो प्रवचन पर प्रवचन दिए। ये हालात है अभी, ये हाल अभी हो गया है। ज्यादा किसको समझाना पड़ता है, जो कम समझता है उसको। तेजी को इशारा बहुत है, वो तो घोड़े आते हैं ना, बहुत अरबस्तान के जो आते हैं उसके मार मार के चलाना पड़ता है। क्या मार मार के चलाना पड़ता है, चलता ही नहीं है, है? ये बात हो गई है। यद्यपि उसने जप तप शास्त्र अध्ययन इत्यादि अनंत बार जीव ने किया है, तथापि जो कुछ भी अवश्य करने योग्य था वो उसने किया नहीं। सजीवन मूर्ति को पहचाना नहीं। बस मुनि मिले तो मुनिराज को नहीं पहचाने, तीर्थंकर मिले तो तीर्थंकर को नहीं पहचाने, और ज्ञानी मिले तो ज्ञानी को नहीं पहचाने। ज्ञानी को पहचानना तो ज्यादा कठिन है, क्योंकि वो तो कई प्रकार के अज्ञानी जैसे उदय में वो कार्य करते हुए देखे जाते हैं। लेकिन मुनिराज है वो तो त्यागी है, और तीर्थंकर देव तो ध्यानस्थ अवस्था में ही विराजमान रहते हैं, समल शरण में, फिर भी हमने नहीं पहचाना। ये एक आश्चर्यकारी घटना तो है। यहाँ ज्ञानी पर तो शंका हम कर सकते हैं कि तो वो बिजनेस क्यों करते हैं, जब उनको मालूम है कि कोई काम की चीज नहीं है, फिर क्यों दुकान पे जाते हैं, गद्दी पे जाके बाजार में जाके क्यों बैठते हैं। और जब परिवार पर उसका कोई प्रतिबंध नहीं, अपना पराया जैसी बात नहीं रही, तो फिर घर 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 गृहस्थी क्यों चलाते हैं। शंका तो होगी, इन मुनिराज पर तो शंका करने की जगह नहीं है। फिर भी कोई शंका करेगा तो ऐसा करेगा, वे आत्मा अनाहारी है ऐसा वो अनुभव करते हैं, फिर आहार के लिए क्यों ध्यान छोड़ करके ज्ञान ध्यान, जंगल में तो ज्ञान ध्यान ही करते थे, वहां तो कोई दूसरी संसारिक प्रवृत्ति तो हो ही नहीं सकती, उसको छोड़ करके खाना खाने को क्यों आते हैं। बहुत हो जाएगा तो आयु पूरा हो जाएगा, नहीं खाते खाते नहीं खाएंगे तो शरीर तो अपना है ही नहीं मुनिराज को। शरीर का संरक्षण नहीं करने के लिए तो नग्न हो गए, अगर रक्षण करना हो तो मकान में रहते, कपड़े पहनते, शरीर की सुरक्षा तो छोड़ दिया है, फिर खाना क्यों खाते हैं? उतनी भी अज्ञान दशा में उंगली उठाने की जगह है, लेकिन सर्वज्ञ वितराग जिनेन्द्र परमात्मा में कोई शंका की उंगली उठाने की भी जगह नहीं है, कोई अवकाश नहीं है। फिर भी हमने नहीं पहचाना है, वो वर्तमान परिस्थिति इसका सबूत है कि हमने नहीं पहचाना है और नहीं पहचाना है। जहाँ कोई शंका की गुंजाइश नहीं है, ऐसी स्थिति में वो विराजते हैं फिर भी नहीं पहचानते हैं। तो जो करने योग्य था वो हमने नहीं किया है, छः महीने का उपवास कर लिया है, दिगंबरी दीक्षा धारण करके राजपाट रानियां छोड़ करके जंगल में चले गए, सब कुछ हमने कर लिया है और अंग पूर्व का स्वाध्याय भी कर लिया है। करने योग्य ये था वो नहीं किया, सजीवन मूर्ति को पहचाना नहीं। तथापि जो भी अवश्य करने योग्य था वह जीव ने किया नहीं है, जो हमने पहले ही बताया है, पत्र का चिट्ठी का प्रारंभ यहाँ से किया है, वो आगे हम बता चुके हैं, वो नहीं किया। क्या नहीं किया? कि ज्ञानी पुरुष के चरणारविंद के प्रति अचल प्रेम हुए बिना और सम्यक प्रतीति आए बिना सब बात फालतू की हो गई, निकम्मी हो गई, उल्टी हो गई सब। सुयज्ञांग सूत्र में जो वर्तमान में है उसमें प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्ययन की 31-32 गाथा है, वो बात मूल बात है, इसलिए कृपालु देव ने उसका आधार दिया है। सुयज्ञांग सूत्र में ऋषभ देव जी भगवान ने जहाँ 98 पुत्रों को पुत्र की उपदेश दिया है मोक्ष मार्ग पर चढ़ाया है, यहाँ यही उपदेश दिया है। मैंने प्रथम तीर्थंकर ने आदिनाथ भगवान ने भी यही उपदेश दिया है कि हे आयुष्यमानो, क्या आप दुर्लभ से दुर्लभ मनुष्य आयु को प्राप्त हो गए काकताली अन्याय से, काक को बैठना, डाल को पड़ना। बहुत अच्छी जगह आ गए, भगवान ऋषभ देव के सुपुत्र हो गए, तो भगवान उपदेश देते हैं कि इस जीव ने सब कुछ किया है, तुम्हारे जीव ने भी सब कुछ किया है, एक इसके बिना। सजीवन मूर्ति की पहचान के बिना सब कुछ किया है, वह क्या? तो कि निश्चय पूर्वक कहते हैं, निश्चय पूर्वक मैंने ठोस बात है, कहते हैं कि सत्पुरुष का कहा हुआ वचन और उसका उपदेश सुना नहीं है, विश्वास पूर्वक। ऐसे तो अंग पूर्व पढ़ा है लेकिन विश्वास आया नहीं है। पहचान बिना विश्वास नहीं आ सकता, भले ही तीर्थंकर देव के वचन हो या ज्ञानी पुरुष के, बिना पहचान विश्वास नहीं आएगा। आप रास्ते में चल रहे हो, कोई अनजाना आदमी मिल जाता है, बोलेगा कि भाई हमको पैसे की ज़रूरत है, 150 रुपया दे दो। तो बोले कि भाई हम तो जानते नहीं, पहचानते नहीं, कैसे देंगे। नहीं नहीं आपको आपका एड्रेस दे दो, हम पहुंचा देंगे आपको। हमको थोड़ा रास्ते में तकलीफ़ हो गई, हमारा जेब कट गया है, देख लो हम आपको। आप बोले वहाँ पहुंचा देंगे, अभी भी हमको 100-200 रुपया दे दो, देंगे क्या हम? क्यों? बिना पहचान विश्वास नहीं आता। ऐसे भले ही हम शास्त्र पढ़े, जिनवाणी है, क्या है? जिनवाणी है। और इन दिनों में हम पूजा भी करेंगे, लेकिन विश्वास पूर्वक नहीं हो रहा है। सब कुछ करते हैं, विश्वास बिना करते हैं। भीतर में अविश्वास है, विश्वास नहीं है तो क्या है? अविश्वास। अब आप कहेंगे कि ऐसी तो बात नहीं है भाई, अविश्वास है ऐसी तो बात नहीं है। हम कुल जैन कुल में तो आए हैं, और जिनवाणी पर अविश्वास है वो बात सम्मत नहीं हो रही है, क्या करें? कि विश्वास है तो उनकी मानते क्यों नहीं? हाँ, अगर विश्वास है तो मानते नहीं है। इसका मतलब के अंदर में जो विश्वास होना चाहिए उस जाति का विश्वास नहीं है। और बात ऐसा ही होता है, आज जैन कुल में जन्म लेता है, अपने कुल के हिसाब से देवगुरु शास्त्र को मानने लगता है, और आयुष दरमियान कुछ उल्टे सुलटे परिणाम हो जाते हैं और अन्य मत में जन्म हो जाता है। और फिर जिस देवगुरु शास्त्र को मानता है उसका ही विरोध में आ जाता है, और कभी कभी तो इसी भाव में हो जाता है। आज मानता है कल विरोध करता है, आज मानता है कल विरोध करता है। क्यों? कि जब मानता था तब भी विश्वास नहीं था अंदर में। कोई इसी भाव में तो कोई भवांतर में, विराधना में आई जाता है। इसलिए सही विश्वास पहचान के बिना आएगा नहीं, और पहचान में तो आना ही चाहिए, कम से कम आना ही चाहिए। ये सजीवन मूर्ति की पहचान के बिना सम्यक दर्शन की लिंक कोई नहीं बैठती है, जहाँ से लिंक चालू होती है और जीव सम्यक दर्शन तक पहुँचता है, मोक्ष मार्ग तक पहुँचता है, वो वहाँ से बैठता है। पहचान होने से और पहचान पूर्वक जो वचन की प्रतीति, आज्ञा रुचि और स्वच्छंद निरोध भक्ति के परिणाम होते हैं, दर्शन में बहुत गल जाता है। कितना? बहुत बहुत गल जाता है। उसको देख करके कहते हैं कि उसको सम्यक दर्शन होने वाला है। दर्शन मोह की इतनी कमजोर परिस्थिति हो जाती है कि उसको सम्यक दर्शन होगा ही होगा। वो बात प्रत्यक्ष तौर से ज्ञानी की नज़र में दिखाई देती है, प्रत्यक्ष तौर से दिखाई देती है। इसलिए यहाँ से सम्यक दर्शन का लिंक बैठी है, वो बात कहते हैं। कहते हैं कि हे आयुष्य मनो, निश्चय पूर्वक तुमको बताते हैं, कहते हैं, ऐसा करके बोले, जरा वजन दे करके कहा कि तुमने सत्पुरुष के कहा हुआ वचन और उसका उपदेश सुना नहीं है, सुना है तो अनसुना कर दिया है, सुना है और उसका अमलीकरण नहीं किया, चोट नहीं लगी अंदर में, तो सुना है फिर भी अनसुना कर दिया है, अथवा सम्यक प्रकार से उसका पालन नहीं किया, यथार्थ रूप से अमलीकरण में नहीं आए, रूढ़ा प्रकारे उठेवा नथी, कारण के अहीं तो जी सम्यक दशा थई नथी, પણ ભાષાંતર કરવા વાળાને બીજો શબ્દ હિન્દીમાં બેઠો નથી, ભાષાંતરમાં રૂડા પ્રકારે ઉઠાવ્યા નથી, હે રૂડા પ્રકાર સે મેને આત્મકલ્યાણ હો જાય એસા પ્રકાર સે ઉનકા પાલન નહીં કિયા, वचन मिले लेकिन आत्मकल्याण हो जाए ऐसा रूढ़ा मैंने सुंदर गुजराती में जी रूढ़ो शब्द है, अपने तो नाम पाड़े नहीं कोई भाई आ रूढ़ी रूढ़ी बहन है एम के रूपाड़ी हो नानपण में तो नानपण से जेनु नाम रूढ़ी पाड़ी दिए, हाँ अमार गुजराती में ये पद्धति से रूढ़ा प्रकार उठाया नहीं, હા એ ભાવ બહુ સારો છે, ભાવવા એ વાત છે, શું પોતા હે શ્રેષ્ઠ સમય એવો ઠીક હે તો હો તો એપ્રોપ્રિએટ અધરવર્ડ નહીં બેઠતા હે, રૂઢી ભાવના નથી કહેતા, બહુ સારી ભાવના હોય તો, બહુ સારી ભાવના હોય આત્મકલ્યાણની તો અમારે ગુજરાતમાં બહુ રૂઢી ભાવના છે, ને એવો કોઈ હળવો જીવ હોય, આત્મરૂચિવાળો જીવ હોય, રૂચિપૂર્વક નહીં પાલન ક્યાં હોય, રૂચિ શબ્દ થોડા બહુ બેઠતા હે, હા પ્રેમ સે પાલન નહીં ક્યાં, રૂચિ સે પાલન નહીં ક્યાં, તો આપણે આ જો રૂચિવાળા જીવ કો બોલતા કે ભાઈ બહુ રૂડો જીવ છે, આ કોઈ રૂડો જીવ છે એમ કે અચ્છા આ બોલની કે પદ્ધતિ છે અમારે, તો વો ભાવ હે વો ભાવ હે ઉસકો, અથવા રૂચિપૂર્વક ઉસકા પાલન નહીં ક્યા, या परम प्रेम से उसका पालन नहीं किया, उठाया नहीं, रूढ़ा प्रकारे उठाया नहीं, उठाना मैंने शिरोधार्य करना, उठा लेना मैंने नीचे गिरना नहीं देना, उठाया नहीं, पालन शब्द कर दिया है, भाव उतना भाषांतर में नहीं आ सकता, और इसे ही हमने मुनियों का सामायिक कहा है। देखो अगर कोई जीव सत्पुरुष को पहचान करके इनके वचन को रूढ़ा प्रकार से उठा लेता है, अपने वो का वो रखे हिंदी में भी रूढ़ा प्रकार से उठा लेता है, ये हमने देखा ये जर्मन लोग हैं ना, कई प्रकार से कोई जर्मन भाषा में क्या इंग्लिश भाषा में नहीं मिले, जर्मन भाषा में तो जैन शास्त्र का शब्द कहाँ से मिलेगा, वो का वो शब्द रखते हैं वो लोग, प्रॉपर नेम गिन लेते हैं उनको, द्रव्य को द्रव्य कहते हैं, फिर सब्सटेंस नहीं कहते, एलिमेंट नहीं कहते, द्रव्य को द्रव्य कहते हैं, ऐसे अगर कोई जीव मुमुक्षु की भूमिका में। ज्ञानी पुरुष को पहचान करके इनके वचन को रूढ़ा प्रकार से उठा लेता है तो वो मुनियों की सामायिक की तुलना दिया है। यहाँ कृपाल देव ने क्या लिखा कि इसे ही हमने, कृपाल देव की ओर से वो टाइटल दिया है, उसको डिग्री दे दिया है कि मुनि जैसे सामायिक में रहते हैं वैसे वो जीव सामायिक में आ गया। जाओ, मुनियों की सामायिक उसको मिल गई, मुनि पद का की डिग्री दे दिया। मुनि के सामायिक में क्या होता है, जो मुनिराज होते हैं वो जब सामायिक करते हैं तो केवल सामायिक पाठ बोलते हैं, ऐसी सामायिक उनकी नहीं होती है। वो आत्मसन्मुख उपयोग को ले जाते हैं और स्वरूप में एकाग्र हो जाते हैं। ऐसे तो क्षण क्षण में होते ही है, लेकिन सामायिक के काल में अधिक स्थिरता को प्राप्त करते हैं, स्वरूप की एकाग्रता बढ़ जाती है, उसको मुनियों की सामायिक कहते हैं। वो सामायिक स्थान दे दिया मुमुक्षु को, अगर वो इस सही मार्ग पर आया तो। ये उत्साह बढ़ाने की बात है, इस विषय का उत्साह बढ़ाने की बात है। वो बात बनी पहले तीर्थंकर के काल में, अब कहते हैं कि आखिर के छेले तीर्थंकर की बात हम करते हैं कि जो इनके मोक्ष जाने वाले शिष्य थे उसमें सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी थे, वो आखिर में गए। बहुत से केवली होते हैं भगवान के समोसरण में, उसमें बहुत हुए, उसमें तीन पीछे रहे, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी। वो तीन अंतिम केवली है इस काल के, फिर कोई केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। गौतम स्वामी शुरू में ही पधारे, बाद में रहे सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी। तो सुधर्मा स्वामी भी जम्बू स्वामी को क्या कहते हैं, कहते थे, वो बात कह रहे हैं। उपदेश देते हैं कि सारे जगत का जिन्होंने दर्शन किया है ऐसे महावीर भगवान, कैसे महावीर भगवान, सिर्फ महावीर भगवान ऐसा बात नहीं लिया, सारे जगत का एक समय में दर्शन कर लिया, देख लिया, दर्शन कर लिया मैंने एक समय में, जिसने सारे जगत को देख लिया ऐसे महावीर भगवान ने हमें इस प्रकार कहा है, भगवान ने हमने वैसा उपदेश दिया, मुनिपद में ऐसा उपदेश दिया। देखो कि गुरु के अधीन होकर आचरण करने वाले अनंत पुरुषों ने मार्ग पाकर मोक्ष प्राप्त किया है, जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्राप्त किया है ये गुरु के वचन के अवलंबन से किया है। उन सभी को स्पष्ट भान वर्तता है कि अगर इस भव में ये गुरु नहीं मिले होते तो मैं कितना अनंत काल तक परिभ्रमण करके बहुत बहुत दुखी होता रहता, इसका पिक्चर उसको दिखाई देता है, चलचित्र फिल्म दिखाई देती है। इसलिए वो गुरु वचन के अवलंबन से आगे बढ़ते हैं। गुरु वचन के अवलंबन से तो शुरुआत की और आगे भी उसी के अवलंबन से बढ़ते रहते हैं। मोक्ष मार्ग प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त किया है, एक इस स्थल में नहीं, परंतु सर्व स्थलों और सर्व शास्त्रों में यही बात कहने का लक्ष्य है, यही बात केंद्र स्थान में है, यही आशय से सभी बात चली है। और इसका प्रसिद्ध सूत्र है, वो भगवान की वाणी का है, आणाये धम्मो आणाये तवो। आज्ञा का आराधन ही धर्म है, गुरु आज्ञा का आराधन ही धर्म है और आज्ञा का आराधन ही तप है। वो बात आचारंग सूत्र में आती है और वो भगवान की मूल वाणी है। सब जगह यही महापुरुषों के कहने का लक्ष्य है। यह लक्ष्य जीव को समझ में नहीं आया। देखो, कहने पर भी समझ में नहीं आया, ऐसे तो समझ में आना चाहिए था, क्योंकि भरवाड़ को भी आता है कि मुझे दर्द हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए। थोड़ी ज्यादा बुद्धि वाला ज्यादा देर दापन कर लेते हैं, तो डॉक्टर को फीस देना और दवाई देना दो जगह खर्च हो जाएगा। अपन सीधा ही मेडिकल स्टोर में पहुंच जाओ ना, देखो ये दर्द हो रहा है, कुछ दवाई दे दो। अच्छा है कि कानून है कि बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से दवाई बेचने की मनाही है, वो तो अच्छा है, वरना ज्यादा बुद्धि वाला ज्यादा डेढ़ापण करेंगे। तो कहते हैं कि सब जगह यही महापुरुषों ने कहने का लक्ष्य है और यही लक्ष्य जीव को कहने पर भी समझ में नहीं आया। इसके कारणों में सबसे प्रधान कारण स्वच्छंद है। देखो, क्यों समझ में नहीं आया और क्यों ध्यान नहीं दिया और क्यों लक्ष्य पर बात नहीं ली, स्वच्छंद। मैं भी समझता हूँ, मैंने भी शास्त्र पढ़े हैं और मैं भी ये काम कर लूँगा, कर सकता हूँ, ऐसी बात कभी बनती नहीं और कभी बनने वाली भी नहीं है। पर इस प्रकार अनंत काल से किया भी है जी ने, अंग पूर्व पट डाले और कठिन से कठिन तपश्चर्या और व्रतादि धारण कर लिए। 1% भी लाभ नहीं हुआ है, कितना? 1% भी लाभ नहीं हुआ, कुछ अंश में भी लाभ नहीं हुआ इसका मतलब, क्योंकि सही मार्ग पर आ ही नहीं सकता जी। इसलिए सबसे प्रधान कारण स्वच्छंद है और ये स्वच्छंद का जो प्रकरण है वो पढ़ लेना चाहिए। प्रयोजन सिद्धि में हमने करीब 55 मुद्दे लिखे हैं, प्रयोजन में बाधक कारण जो दर्शन मोह है वो कैसे कैसे बढ़ता है और कैसे कैसे घटता है, उसमें 32वां बोल लिया है। स्वच्छंद जो मुमुक्षु की भूमिका का महादोष है, संसारियों का महादोष नहीं लिया, मुमुक्षुओं का महादोष है, वो स्वच्छंद है। और वो स्वच्छंद के कितने कितने प्रकार होते हैं उसे कोई 20 प्रकार उसमें दिए हैं, 32 नंबर के पेटा आइटम में वो बात दिया है, वो थोड़ा वहाँ से देख लेना चाहिए। और उसको जैसे कैसे भी स्वच्छंद को तो मिटाना पड़ेगा ही, क्योंकि परिभ्रमण का ये मुख्य कारण है। इस पर थोड़ी और चर्चा कल के स्वाध्याय में लेंगे, समय समाप्त। भक्ति है,
प्रभु जी मन मंदिर में आओ, प्रभु जी मन मंदिर में आओ, प्रभु जी मन मंदिर में आओ। हृदय सिंहासन सुना तुम बिन, हृदय सिंहासन सुना तुम बिन, उसमें आप बस जाओ, उसमें आप बस जाओ, प्रभु मन मंदिर में आओ, प्रभु जी मन मंदिर में आओ। तापत्रय संतप्त आत्मा परे, तापत्रय संतप्त आत्मा परे, शांति सुधा बरसाओ, शांति सुधा बरसाओ, प्रभु जी मन मंदिर में आओ, प्रभु जी मन मंदिर में आओ। निरस मन को भक्ति के रस से, निरस को भक्ति के रस से, भगवान अब सरसाओ, भगवान अब सरसाओ, प्रभु